नेक्स्ट पे चलिए। वइजा कील लहुम ला तुफसिदु फिल अर्दी, ऐसे लोगों को जब ये कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद न करो, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो कहते हैं हम तो जी बस इसलाह करने वाले हैं। अच्छा, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशुरून, खबरदार रहो बेशक वही फसादी हैं लेकिन उनको इसका शऊर नहीं है। यहां जरा गिनिए, पहली चीज फसाद, दूसरी चीज फसाद के नाम पे खुद को इस मुसलिह कहते हैं। अब फसाद ये भी उसकी लिस्टों में आप डालते जा रहे हैं ना। फसाद की कुछ डेफिनेशन तो हमने पढ़ी है ना लफ्जी वजाहत में, या थोड़ा सा इसको और देख लीजिए। मुनाफिक किस तरह से फसाद का नाम इसलाह और इसलाह का मुनाफिक देता है। मैं आपको इस पूरी दोनों मिसालों के लिए एक मिसाल देती हूँ, यानी ये दो आयतें समझने के लिए एक मिसाल आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप इसको इंशाल्लाह इसके बिल्कुल सिनेरियो में समझेंगे। आप देखिए कि एक बस्ती है जिसमें लोग पानी पीते हैं। एक दिन पता क्या चलता है कि जो पीने वाले पानी की जो पाइप्स हैं उसके अंदर गटर वाला पानी मिल गया। अब पता चल गया, शोर मच गया, ये क्या हुआ। अब लोग जमा होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा देखो ये तो ठीक नहीं है। फिर बस्ती के लोग मशवरा करते हैं क्या करें। एक गिरोह कहता है कि भाई जल्दी से फटाफट इन पाइपों को बदलते हैं और दूसरा पाइप साफ डाल लेते हैं क्योंकि हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, हमारी नस्लें। दूसरा एक गिरोह है वो कहता है छोड़ो, फिर पानी बंद होगा, फिर इतना खर्चा होगा, जैसे भी है वैसे रहने दो। अब ये दो गिरोह लड़ने लग गए, समझ गए। एक तीसरा गिरोह आ जाता है, वो कहता है देखो अल्लाह के बंदो लड़ना छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ इस तरह से करता आता हूँ कि तुम्हारे लिए बीच का रास्ता निकाल देता हूँ, गंदा पानी काम हो कुछ हो जैसा। यानी एक चपकलश हो गई, बात वाजे। कोई कह रहा है हम तो बाप दादा के वक्त से ये पानी पी रहे हैं, अब हम क्यों बदले। दूसरा गिरोह कहता नहीं। अब बताइए कि वो गिरोह जो सफाई पसंद है, जिनको थोड़ी बहुत बीमारियों की समझ है, वो तो एकदम उठ के खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा अच्छा भाई फिर आप पिए इधर से पानी, हम तो जा रहे हैं, हम तो ये नहीं करते। ये इधर हो गया, जो अड़े हुए थे उसी के ऊपर वो दूसरी तरफ हुए। इसको आप क्या कहेंगे, फसाद। फसाद हो गया ना दोनों में, समझ गए। अब तीसरा गिरोह जो है वो कहता है कि तुम ऐसा करो लड़ना छोड़ दो और जिस तरह जिंदगी बसर कर रहे थे वैसे ही करनी शुरू कर दो। अब आप गौर से सुनिएगा मेरा जुमला, दोनों में कौन सी सिचुएशन बेहतर है। चुप 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 चुप, पीस में कर पीस में कर, जो पी रहे थे चुप रहो लड़ो नहीं, एक ये कंडीशन है बहुत ज़ाहिर अमन है। और दूसरी जिसमें जो दो ग्रह लड़ रहे हैं, आप बताएं कि दोनों में से हेल्दी कंडीशन कौन सी है। जीना दिया, लड़ाई हो लेने दें, एक दिन ये खड़े हुए आज 10 हैं कल 11 होंगे 12 होंगे, जब 50% से ज्यादा लोग होंगे ये अपनी बात मनवा लेंगे। तो ये झगड़ा उस खामोशी से बेहतर है। बिल्कुल यही है इधर कि जो मैंने आपको मिसाल दी कि जब सच्चा इस्लाम आपके अंदर आएगा ना, तो कुछ लोग मुआशरे के एक एज पे जाएंगे, उनको अल्लाह दिख रहा है, रसूल दिख रहा है, जन्नत दिख रही है, दूसरे उनके साथ नाराज होंगे, तो ये झगड़े बेहतर हैं क्योंकि इसके थोड़े अरसे के बाद फिर घरों में दीन की बहारें आएंगी। कुछ लोग इस झगड़े से गिव अप कर देते हैं, कहते हैं हमसे घर में लड़ाई नहीं बर्दाश्त होती, हम ये नहीं कर सकते, जब से दीन आया लड़ाइयाँ शुरू, दिस एंड दैट दिस एंड दैट। यानी फसाद क्या है कि लोग अल्लाह की नाफरमानी पे खुश हैं, चलो भाई सारे दावते तो खा रहे हैं ना, पार्टियों में तो जा रहे हैं, और अब ये क्या इन्होंने झगड़े डाल दिए जी, ये मुंह लपेट के बैठ जाती हैं, क्यों मेरे बेटे को चोर है, क्यों मेरे बेटों की को नजरें बुरी हैं, अब ये बहू को क्या हो गया कि ये जी पर्दा करने बैठ गई। अब ये झगड़े जो होते हैं ना दीन के आने पे, ये खुश आमदीद है। अल्लाह के नबी की तो दो बेटियों को तलाक हो गई थी, हमें तो अल्लाह ऐसी आजमाइशों में भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं डालता ना। लेकिन मुनाफिक जो होता है ना वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लिख लें कि मुनाफिक अपना नाम पीस मेकर रखता है। कई लोगों के बारे में आप सुने, लोग कहते हैं ये तो बड़े सॉफ्ट हैं, किसी को भी बुरा नहीं कहते। ये क्या बात हुई, कोई गलत काम कर जाए तो भी ये बुरा नहीं कहते, जो सही काम कर ले ना कहे बेहतर नहीं, ये नहीं वो नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं वलाकिल्ला यशुरून, लेकिन इनको शऊर ही नहीं है। फिर देखिए दोबारा ये सिफत रिपीट हो रही है कि मुनाफिक, वहां झूठ के साथ शऊर ना होने की बात थी, यहाँ फसाद के साथ। क्या पता चला कि मुनाफिक झूठ भी जो बोलता है ना वो भी बेशौरेपन में बोलता है, और फसाद के नाम पे इसलाह। आज भी आप देख लीजिए जो खानदानों में बेदीनी पे सारे बैठे, औरतें मर्द खाते पीते गप्पे मारते, आधी आधी रात तक बैठते, फजर से थोड़ी देर पहले रुखसत हुए जाके सो गए। लोग उस पे तो बड़े खुश हैं कि माशाल्लाह हमारी फैमिली में बड़ा इत्तेफाक है। जब से दीन आया कहते लो जी पहले दरवाजे पे खड़े होके नॉक करके पूछो हम आए ना, हम नहीं आते, ये भाई का घर है या किसी और का घर है। अब ये जो दो झगड़ों वाले सीन शुरू हो जाते हैं ना, अल्लाह सुब्हान तआला इधर उसी की वजह बता रहे हैं कि असल में ये शऊर की कमी है। जब असल दीन इनके घरों में आता है इनको खुद पता चल जाता है। आप फील करके देखें, जहाँ जितना ज्यादा इंट्रैक्शन होता है ना रिश्तेदारों का, उतने गिले शिकवे, उतनी लड़ाइयाँ। मिलते हैं पहले आधी आधी रात तक बैठते हैं, फिर बाद में वो जाते हैं तो घर वाला बुड़बुड़ाता है कि हाय देखो इतना शोर कर गए, इतना गन डाल गए, ये कोई वक्त था जाने का, ये कोई वक्त था आने का। हम बेतकल्लुफी के नाम पे लोगों को डसते हैं, मुरव्वत के नाम पे क्या बोले आप। और अगर एक बंदा कह देता है कि भाई मैं घर पे नहीं हूं तो उस वक्त आप मत आइए, तो इसमें क्या बुरी बात है। तो लिहाजा लाशौरेपन में ये काम होते हैं। और आप फील करके देखें, अगर फिर इधर लाशौरीपन को और झूठ को थोड़ा सा मिला के देखें तो हमारी जिंदगी के झूठ ऐसे ही होते हैं, लाशऊर है। दर्जियों से कितने झूठ बोलते हैं लोग, बस कल पहनना है, बस बाजी की फ्लाइट है परसों की, बस बस ये कपड़े सी दो, शादी होती है 1 माह बाद की पहले 1 महीने की डेट दे देते हैं। क्यों? कि वो पीछे लग जाएंगे। और वो दर्जी भी तो फिर हमारे ही भाई है ना, उनको भी पता था कोई नहीं है ये झूठ बोलती है, नहीं, वो हमने तुम्हारे लिए फ्लाइट आगे करा ली है, अब दे दो। लाशौरी लायशुरून, बिल्कुल शऊर की कमी है। अल्लाह ताला कहते हैं व इज़ा, और जब कील लहुम उनसे कहा जाता है आमिनो ईमान ले आओ, कमा मनन्नास जैसे ईमान लाए लोग, जब ऐसे दो रुखे लोगों को कहा जाता है कि तुम ऐसे ईमान ले आओ जैसे कि दूसरे लोग लेके आए, तो ये क्या कहते हैं, कालू अनुमिनु कमा मनसुफहा, क्या हम उस तरह से ईमान लाएं जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाए। अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ, खूब सुन लो बेशक ये खुद ही बेवकूफ है, वलाकिन ला यालमून, लेकिन ये जानते नहीं है। अब इस हिस्से में से आप जरा देख लीजिए कि क्या क्या सिफात मिली, कि जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ तो ये ईमान लाने वालों को बेवकूफ समझते हैं। यहाँ पहली बात है कि आमनन नास से मुराद कौन है, सहाबा किराम अबू बकर नेक लोग, यानी ऐसे लोगों को आज के दौर पे अगर आप देखें कि जब ये कहें कि देखो तुम भी ईमान ले आओ, जैसे देखो ना फुलां भी तब अच्छा हो गया, आप अपनी बच्ची से ही कहें देखो ना वो फुलां ही कुरान पढ़ने लग गई, फुलां देखो अच्छा हिजाब करने लग गई है, तुम भी करो, तो वो कहती है अच्छा नो मिनु कमा मना सुफा, वो जो बेवकूफ लगती है हिजाब पहन के, वो जो स्टूपिड लगती है, वो जो मासी लगती है, अच्छा बेटा तुम भी जरा दाढ़ी के बारे में सोचो, अच्छा जी मैं दाढ़ी रख लूं, अच्छा वो फुलां की तरह, ये स्टाइल है। मुनाफिक दीन पे अमल करने वाले को बेवकूफ सब कहता है, फनेटिक एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्टिक टेररिस्ट, इससे भी बढ़ के और दो लफ्ज बोल लें। मुनाफिक क्या समझता है कि चूंकि मैं सबको खुश रखता हूं इसलिए मैं अकलमंद हूं। और सफीह कहते हैं ऐसे शख्स को जिससे अपने नफे और नुकसान का पता ही ना हो। मुनाफिक होशियार क्यों बनता है, आखिरत चाहता है मगर दुनिया छोड़ना नहीं चाहता। और मुनाफिक कौन होता है कि जो दीन नाफिज करना चाहते हैं मगर इसके रास्ते की कुर्बानियां नहीं देना चाहते। मुनाफिक क्या सोचते हैं कि हमने दीन और दुनिया में बहुत अच्छा बैलेंस रखा हुआ है, वेरी गुड बैलेंस्ड लाइफ, देखो इन्होंने तो रिश्तेदारों से बिगाड़ लिया, मुश्किल में इनके कौन काम आएगा, चले अब देखते हैं कि इनके रिश्ते कैसे होते हैं। हकीकत यह है कि मुनाफिक का हाल क्या है कि वो हर वक्त कुछ दिए बगैर सब कुछ लेने का एहसास रखते हैं। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है फारसी का कि चुई गोयम मुसलमानम बलरसम, खुद को मुसलमान कहते हुए मैं डरता हूँ कि दानम मुश्किलाते ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं जानता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद क्या मुश्किल आती हैं। और अगर आप सूरत अनकबूत की पहली आयत खोले ना, अहसिबन्ना सयुतरकु अय्यकुलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान किया कि वो ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे कि हम मुसलमान हो गए ईमान ले आए और वो आजमाए ना जाएंगे। तो याद रखिए शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुनाफिक कुर्बानियों के बगैर एजाज लेना चाहता है, और मुखालफत के बगैर तारीफ सुनना चाहता है, काम नहीं करना चाहता, लेकिन कहता है ये नाम हो के सारा काम मैं करता हूँ। नतीजा क्या होता है कि ये शख्स दो रुखा हो जाता है। अल्लाह सुबहान तआला ऐसे ही लोगों के बारे में कहते हैं कि इनको नेक लोग मौलवी लगते हैं, वलाकिन ला यालमून, अगली सिफत इल्म से दूर है। निफाक वाले दिल में इल्म जा ही नहीं सकता। ये तो बात मैं आपको पत्थर पे लकीर की तरह लिख के दे देती हूँ। इल्म पे भी कदम तभी जमते हैं जब दिल के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता निफाक निकलता है। देखिए, फिसलने वाली जमीन होगी ना, गीली कीचड़, तो आप बीज डालेंगे भी ना तो उगेगा नहीं। बीज डालने के लिए जमीन सख्त लेते हैं, फिर खोद के उसमें बस बीज डालते हैं, फिर दोबारा जमीन को सख्त कर देते हैं। सख्तियों की जमीन पे बीज उगते हैं। आप रख दें शीशे के जार में एक बीज को, 10 साल पड़ा रहेगा, नहीं उगेगा। इस तरह नाजुक अंदाम लोग कभी भी अल्लाह के रास्तों में नहीं निकल सकते। मुनाफिक क्या चाहता है कि ढीली ढीली जमीन पे दीन का पौधा लगे। आप सोचिए, जो पौधा ही जमीन पर ढीली है, सख्त जमीन क्यों चाहिए होती है? ताकि उसकी जड़ों को पकड़े। ढीली जमीन पे पौधा निकल भी आया, जरा सा फल लगेगा, धड़ाम से गिरेगा, बैलेंस ही नहीं होगा। तो दीन के कामों के शुरू में खास तौर पे मुश्किल का आना, ये बंदे के ईमान का इम्तिहान होता है। इसके लिए इल्म बंदे को जमा देता है। चलिए अगली सिफत पे जाते हैं, इनके ऊपर इकट्ठी बात बाद में कर लेंगे।